मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 30 जनवरी 2017 है और आज के इस AFEIS.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों स्वागत करता हूं अपने उन नौजवान 5 साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की इस साल अब अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं दिलीप उपाध्याय जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं, संजीव किरार आप गुना मध्य प्रदेश से हैं, गणेश कुमार मुंगेर बिहार से हैं, भूपेश नेताम बालोद छत्तीसगढ़ से हैं और अंकित सिंह कोंद्रा उत्तर प्रदेश से हैं। तो दिलीप, संजीव, गणेश, भूपेश और अंकित, आप सभी पांचों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इस स्वागत के साथ ही मुझे एक मेल मिला है और वो विपिन गुप्ता का है जो सिरोंज मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने लिखा है कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में उनका सिलेक्शन हो गया है, फाइनल सिलेक्शन हो गया है और वो असिस्टेंट इंजीनियर बन गए हैं। तो विपिन, आपकी इस सफलता के लिए मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत ही बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। फ्रेंड्स, अब एक छोटा सा इसे आप गाइडेंस ही कह लें। गाइडेंस यह है कि फ्रेंड्स, जो सिक्स बैच में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उन्हें मैं एक विशेष रूप से गाइडेंस देना चाहूंगा, निर्देश देना चाहूंगा या आप कह लें कि चाहे आप आने से पहले या आने के दौरान जर्नी, रास्ते में ही, ट्रेन में, बस में, जिसमें भी आप सफर करेंगे, आपको एक काम करना है फ्रेंड्स। और वो काम ये करना है कि आपको जो मॉडर्न इंडिया है उसको एक बार केवल पढ़ना है। मैं केवल पढ़ने की बात कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश मत कीजिए, आप रटने की कोशिश मत कीजिए, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, गो थ्रू, जैसे कि आप नॉवेल पढ़ते हैं। मैंने जो मॉडर्न इंडिया की बात कही है, मॉडर्न इंडिया को आप वहां से ले लीजिए दोस्तों, जब प्लासी और बक्सर वगैरह की लड़ाई शुरू होती है वहां से लेकर के 1857 तक का पहला पार्ट है और इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो 1857 या कह लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से होती है, उससे लेकर के और आजादी तक, आजादी मिलने तक, ये इसका पहला पार्ट है फ्रीडम मूवमेंट का या मॉडर्न इंडिया का कह लीजिए। इसके बाद फिर आप दूसरा पार्ट पढ़िएगा आजादी के बाद से लेकर 1972 तक, 75 तक समझ लीजिए, इमरजेंसी लगने तक, ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का भारत। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको प्लासी बक्सर के युद्ध से लेकर के 1857 या कह लीजिए प्लासी बक्सर के युद्ध से लेकर के देश की आजादी तक और फिर आजादी के बाद से लेकर के 1975-80 तक, उसमें तो देखिए बांग्लादेश के निर्माण के बाद तक आप कह सकते हैं 1971-72 तक। मित्रों, ये आप किसी भी किताब से पढ़ लीजिए, आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ लीजिए, आप विपिन चंद्रा जी की किताब से पढ़ लीजिए, आप दूसरी किसी भी इतिहास की किताब से पढ़ लीजिए और संक्षिप्त में पढ़िए, मतलब बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स कि यहां आपको 2-3 लेक्चर इस पर होंगे, खासकर इसी टॉपिक पर, मॉडर्न इंडिया पर और इसके बाद फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये लेक्चर उस तरीके से नहीं होंगे, बहुत ही डिफरेंट किस्म के होंगे, आप वो तो आने के बाद ही आप अनुभव करेंगे। यदि आप पढ़े हुए होंगे तब उस लेक्चर की जो वक्त है, जो कीमत है, उपयोगिता आपके लिए कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इससे पहले कि आप ये लेक्चर सुने, समझें, बेहतर होगा कि एक तरह अपनी जमीन तैयार कर लें। हां, ये बात मैं और कहना चाहूंगा कि यदि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपका, आपकी हिस्ट्री थी या आपने हिस्ट्री किसी भी बहाने पढ़ ली है या आप सिविल सर्विस की तैयारी या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तब फिर आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यह गाइडेंस उनके लिए है, यह अपील उनके लिए है जो मॉडर्न इंडिया के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते या फिर जब 10वीं-12वीं में पढ़े होंगे उस समय के बाद से उन्होंने कभी इसे छुआ नहीं है, उनके लिए यह विशेष रूप से निर्देश है कि किसी भी तरीके से कोशिश करें कि वो पढ़ लें, बस एक बार गो थ्रू जिसको कहते हैं, नजर मार लें। दोस्तों, अब इस गाइडेंस के बाद अब मैं आता हूं आज के न्यूज एनालिसिस पर। कल के न्यूज आपने सुनी होगी मित्रों, कल के रेडियो न्यूज में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के अंतर्गत आप लोगों से, या स्टूडेंट जो अभी 10th 12th के एग्जाम शुरू होने वाले हैं सीबीएसई के और दूसरे भी स्कूल और कॉलेजेस के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, कहा उन्होंने कि बहुत खूबसूरत उन्होंने बात कही कि इसे एक उत्सव की तरह लें, फेस्टिवल की तरह लें। मैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का हूं। कोई भी काम बोझ नहीं होता, और अगर बोझ होगा तो सरल से सरल काम भी आप समझ लीजिए कि कठिन हो जाएगा, अदरवाइज कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात कही। खैर, ये तो लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकता है। मित्रों, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही मन की बात के अंतर्गत, वो अधिकार एवं कर्तव्यों को लेकर, राइट्स एंड ड्यूटीज। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, उसे फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही, और आपको मालूम है कि फिर 42nd अमेंडमेंट के तहत उसमें 10 कर्तव्य भी जोड़ दिए गए हैं। और सच पूछे तो कोई भी समाज बैलेंस तरीके से तभी रह सकता है जब वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करे, और वो अभाव दिखाई दे रहा था। इसीलिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, तब 42nd अमेंडमेंट लाकर के उन्होंने 10 कर्तव्यों को जोड़ा। हालांकि आप देखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट के तहत संविधान में काफी परिवर्तन किए गए थे जिन्हें अच्छा नहीं माना गया, और बाद में जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो 42nd अमेंडमेंट के बहुत से प्रावधानों को फिर से पुनर्स्थापित, पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए 44th अमेंडमेंट लाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था। और इसके उसमें जब लाया गया तो 10 कर्तव्य भी 42nd के माध्यम से जोड़े गए थे, लेकिन 44th में उन 10 कर्तव्यों को रहने दिया गया, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यानी कि बाद में जो हमारे लीडर्स आए वो भी महसूस कर रहे थे कि नहीं, ये कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें रहने दिया जाना चाहिए। तो अधिकार और कर्तव्य, ये एक ऐसे फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में मदद करती हैं और सोशियोलॉजी में भी काम आती हैं, एथिक्स में भी काम आएगा ये विषय, कॉन्स्टिट्यूशन में तो काम आएगा ही। तो ये आपकी जानकारी में होने चाहिए कि हमारे 10 कर्तव्य कौन से हैं। बस फर्क इतना ही है कि आप अपने अधिकारों को पाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कर्तव्यों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको उसके लिए सजा नहीं दी जा सकती, तब तक जब तक कि उसके माध्यम से किसी कानून का उल्लंघन न हो रहा हो। तो मित्रों, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा फ्रेंड्स, चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, आपने न्यूज में सुना कि जो अमेरिका का जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है, अमेरिका की सो कॉल्ड कह लीजिए सुप्रीम कोर्ट, उसने खासकर अभी जो ट्रंप वहां के राष्ट्रपति हैं, आपने पढ़ा दो तीन दिन पहले की ही खबर है कि उन्होंने 7 जो इस्लामिक देश हैं उनके लोगों के आने, अमेरिका आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया 3 महीने के लिए, जिसमें ईरान है, इराक भी है, सूडान है, ये वो देश हैं जहां, सीरिया भी है, जहां ISIS का वो मान के चल रहे हैं कि काफी दबदबा है और आतंकवादी गतिविधियां काफी हो रही हैं। तो लोग कोर्ट गए और वहां के जो फेडरल कोर्ट है उसने इस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के इस आदेश पर अभी स्टे दे दिया है। दोस्तों, जो अमेरिका का जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ये मान के चले कि भारत के सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत अधिक अधिकार संपन्न है। हमने जो पैटर्न लिया है अपने यहां जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का, यूं कह लीजिए कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम ही है, संसद भी कुछ नहीं कर सकती। ब्रिटेन का जो सुप्रीम कोर्ट है, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है, वो इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन वहां संसद उससे भी ज्यादा पावरफुल है, संसद, तो वहां पे फिर कोर्ट थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। हमने बीच का रास्ता लिया है, हमने सुप्रीम कोर्ट को अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में रखा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तो है लेकिन संसद से सुप्रीम नहीं है, लेकिन यदि संसद कुछ गलत करती, आप देख रहे हैं कि सर गलत क्या करती है, वो संविधान की आत्मा का सिद्धांत है कि अगर वो संविधान की आत्मा के खिलाफ संसद कोई चीज पारित करती है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट को उसकी विवेचना करने का अधिकार मिल जाता है। तो आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से बैलेंस भारत ने अपने न्यायपालिका को बनाकर रखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, खासकर जुडिशरी का, जो आपकी दृष्टि बहुत साफ होनी चाहिए, तभी आप जुडिशरी से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर सकेंगे। और आप देखेंगे कि हर साल जुडिशरी से एक क्वेश्चन आता ही आता है, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। इसके बाद मित्रों, जो तीसरी खबर थी वो अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के थी कि आचार संहिता के उल्लंघन के लिए अब चुनाव आयोग ने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज करने का मतलब है कि एक रिपोर्ट लिखाई जाएगी थाने में और फिर उसकी जांच परख और जो भी आपराधिक मामला बनेगा वो कार्यवाही शुरू हो जाएगी। वो भी आपको मालूम है कि उसका कारण क्या है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अभी गोवा में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां उन्होंने ये वहां के लोगों से, मतदाताओं से अपील की है कि अगर तुमको कोई दूसरी पार्टी वाले पैसा देते हैं, रिश्वत देते हैं वोट देने के लिए, तो तुम मना मत करो, उनसे पैसे ले लो, हाँ बस ये जरूर है कि वोट जो है आप पार्टी को देना। तो इसको एक रिश्वत को भड़काने वाला, रिश्वत का समर्थन करने वाला, आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला माना गया है। और उसके आधार पर पहले भी चुनाव आयोग ने उन्हें सतर्क किया था, इसके बावजूद फिर से उन्होंने ये बात कही है, तो अब एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई है। मित्र चलिए, ये तो घटना है, आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको अपने फोर्थ पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इस रूप में इस्तेमाल कीजिए कि क्या यह अपराध नहीं है। एक किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर अगर पब्लिक से सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि तुम ले लो पैसा, ले लो किस चीज के लिए पैसा ले लो, पहली बात तो यह है कि वोट के लिए पैसा ले लो, और इसके बाद लेने के बाद फिर दूसरा, एक तो वोट के लिए पैसा लेना ही अपराध है, किसी भी काम के लिए गलत अगर आप आधिकारिक नहीं है तो लेना अपराध है। इसके बाद दूसरा अपराध ये कि जो वचन देकर के पैसा लिया है कि तुमको हम वोट देंगे, वो ना देकर के साफ अपील हो रही है कि वो वोट हमको दो, तो ये दूसरा एक धोखा देना जैसा हुआ। तो ये जो दो बिंदु है इसके, एक ऐसी घटना है जिसका इस्तेमाल अगर कोई इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है फोर्थ पेपर में, मेंस की बात मैं कर रहा हूं, तो वहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मित्रों, ये न्यूज में तो, रेडियो न्यूज में तो कुल मिलाकर के इतनी ही बातें थी। अब हम आते हैं रेडियो न्यूज से थोड़ा सा हटकर। दोस्तों, एक खास घटना के बारे में मैं विशेष रूप से आपसे चर्चा करना चाहूंगा, और वो घटना है अभी जो संजय लीला भंसाली जी जो पद्मावती पर जो फिल्म बना रहे हैं उसको लेकर जो घटना जयपुर में घटित हुई है, उसके बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप देखें कि सिविल सर्विस के में इसको आप कैसे लेंगे, क्या लेंगे, किस रूप में लेंगे, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स देखिए, जब सिविल सर्विस की आप तैयारी करते हैं तो जो घटना होती है वो घटना बैकग्राउंड में चली जाती है, और उस घटना से जो एक इश्यू पैदा हुआ है, जो मामला पैदा हुआ है, जो बहस पैदा हुई है, वो प्रोमिनेंट हो जाती है। सिविल सर्विस में आपको इस घटना के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, हाँ इस घटना से अगर कोई मुद्दा उठा है और जो एक राष्ट्रीय बहस का, राष्ट्रीय बहस और राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है, तो उस पर डेफिनेटली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते ही है, प्रश्न ही इस तरह से पूछे जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं तो आपकी देखिए दो स्थितियां होती हैं, आपकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो दो रूप में है। पहली आपकी आइडेंटिटी यह है एक व्यक्ति के रूप में, हम एक समाज के, हम देश के नागरिक होने के नाते एक तो है ही है, देश के नागरिक भी हैं, व्यक्ति भी हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैं राजपूत हूं, राजपूतों के मामले को ही लेकर के ये मामला उठा है, मान लीजिए मैं राजपूत हूं, तो मेरे राजपूत होने के आधार पर ये जो भी घटना घटी है इस पर मेरा अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, सही है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, क्यों गलत है, क्या क्या है, वो मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन दूसरे, जब मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं तो वह दृष्टिकोण जो मेरा होगा वह दृष्टिकोण मेरा एक भारत के नागरिक के रूप में होगा, व्यक्ति के रूप में नहीं होगा, और भारत के नागरिक के रूप में भी एक सिविल सर्वेंट के रूप में होगा, क्योंकि मैं सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठ रहा हूं, तो वो मेरा एटीट्यूड देखना चाह रहे हैं कि मैं सिविल सर्वेंट अगर बना दिया गया मुझे तो मैं इस तरह के मामलों को कैसे हैंडल करूंगा, मेरा दृष्टिकोण क्या है। और जब हम सब एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में अपने को देखते हैं या सिविल सर्वेंट के रूप में देखते हैं तो डेफिनेटली फिर जो संविधान है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, हमें सारी चीजों को संविधान के दायरे में ही देखना होगा, चाहे मैं भले ही व्यक्तिगत रूप से उसे पसंद करूं या ना करूं, नहीं पसंद करने का तो वैसे सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं संविधान को पसंद नहीं करता हूं तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि संविधान को इन्फोर्स में लाने की ताकत अधिकार सरकार के पास है, मुझे मानना ही पड़ेगा। फिर तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप व्यवस्था रख ही नहीं सकते हैं। तो ये अपनी दोनों पहचानों को अलग अलग रख कर इस मुद्दे पर सोचने की बेहद जरूरत है। दोस्तों ये जो मुद्दा है आप देखेंगे कि कई कई एंगल से आपको दिखाई देगा। मैं आपको सिविल सर्विस के लिए ही बता रहा हूं, जैसे आपका इतिहास भी विषय है सिविल सर्विस में, कला भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, ये सारी चीजें आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में है। और ये जो एक घटना है आप देखें कि हर तरह की चीजों के लिए आपको तर्क प्रस्तुत, ये कह लीजिए कि गलियां प्रोवाइड कर रही कि आप इसमें भी घुस सकते हैं, इसमें भी घुस सकते हैं, इसमें भी घुस सकते हैं। जैसे एक फिल्म बनाई जा रही है, राइट, तो फिल्म कला की अभिव्यक्ति का माध्यम है। फिल्म का जो एक्सप्रेशन होता है वो बड़े डिफरेंट किस्म का एक्सप्रेशन होता है, इसकी जो बुनावट है, जो रचना है वो अलग किस्म की होती है। साहित्य और फिल्म एक ही नहीं है, भाषण और फिल्म एक ही नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम जाते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मामले में फिर वो एक ही हो जाते हैं कि ये सब एक ही है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न बता रहा हूं जो 2014 में जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में पूछा गया, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अनसॉल्व्ड पेपर किस तरह से आपको सिविल सर्विस की तैयारी करने में मदद लेनी चाहिए, उसमें एक प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड, 12.5 नंबर का है, 200 शब्दों में लिखना है कि आप वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र संकल्पना से क्या समझते हैं, क्या इसकी परिधि में घृणा वाक भी आता है। भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है, चर्चा कीजिए। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं फ्रेंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो, Why do the films in India stand on a slightly different plan from other form of expression? Discuss. तीन भागों में इसको पूछा है। अब आप देखिए कि फिल्में अभिव्यक्ति के भिन्न स्तर पर क्यों हैं? अब आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति के भिन्न स्तर पर, तो यहां जब अगर मान लीजिए इस पर प्रश्न कुछ पूछा जाता है, क्योंकि फिल्म से जुड़ा हुआ ये मामला है ना, तो वहां उस भिन्न स्तर को आपको ध्यान में रखना होगा, तब जाकर के आप इसके साथ अपने उत्तर के साथ सही तरीके से न्याय कर पाएंगे। फिर एक ये भी है मित्रों कि इतिहास, क्या ये जो घटना है ये इतिहास सम्मत है, अगर इतिहास सम्मत नहीं है तो अगर लोक कथाओं में पद्मावती की कथा है या जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी बहुत महाकवि ही हुए हैं एक तरीके से कह लीजिए, कवि महाकवि ही हैं, उनका एक ग्रंथ है पद्मावत जो बहुत महान ग्रंथों में से एक माना जाता है, उसमें पद्मावती के इस पूरे कथा का वर्णन है, तो क्या वहां से इतिहास में आया है, इतिहास से कितनी छूट ली जा सकती है, क्या लोक कथाओं को भी इतिहास का एक सोर्स बनाया जा सकता है, एक स्रोत माना जा सकता है, अगर लोक जीवन में है तो क्या हम लोक जीवन से छेड़छाड़ कर सकते हैं। फिर आस्थाओं और भावनाओं का भी सवाल आ जाता है कि अगर किसी वर्ग को ठेस पहुंचती है तो क्या किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ढेर सारे प्रश्न आप देखेंगे कि ये मामला, ये जो घटना है ये उठाती है। तो आप सबको चाहिए कि अपने दिमाग में इस तरह के प्रश्नों को उठा करके और फिर अपने अपने ढंग से उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करें, ये सिविल सर्विस की तैयारी के लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है, होगा। मित्रों तो अब न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स का जहां तक सवाल है, मैं छोटे छोटे चार क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसकी चर्चा मैं नहीं कर पा रहा हूं। अब मित्रों हम आते हैं ईमेल पर, सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, धर्मराज मिश्र, किशन मेवाड़ा पालिताना गुजरात से, तनु प्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, तनु कुमारी तोरपा झारखंड से, आशुतोष सिंह, सुप्रिया रघुवंशी, अमित कुमार, सजल राम खगड़िया बिहार से, महिपाल कुमार, रवि जड़िया अहमदाबाद से, संगीता चौधरी, शाश्वत अग्रवाल, रोहित सिंह उन्नाव उत्तर प्रदेश से, सत्यम, अंकिता त्रिवेदी, अजय प्रताप, रुपेंद्र कुमार, आनंद विकास और संगीता चौधरी। संगीता चौधरी का नाम मैं पहले ले चुका हूं, ये राजस्थान से है संगीता चौधरी। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।